तो मदन मोहन जी के दर्शन में हम कल जाएंगे, लेकिन आज हमने थोड़ा सा, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई कि कथा करके फिर दर्शन करते तो थोड़ा सा अलग से होता। फिर भी आपको मदन मोहन जी, सॉरी, गोविंद जी का दर्शन दोबारा होगा आज की कथा सुनने के बाद। आपका शायद क्या कहते हैं उसको, अप्रोच थोड़ा चेंज हो जाएगा उनके पास, देखने में भी थोड़ा सा लगेगा हाँ भाई, अगर हमारे बीच में कोई प्रधानमंत्री आके बैठता और आपको पता ही नहीं कौन प्रधानमंत्री है क्या है, और कथा पूरी हो गई उसके बाद में बोला वो था ना व्यक्ति पीछे, वो प्रधानमंत्री था, अच्छा वो, सलाम सलाम। और कल आएगा तो फिर सब लोग अदब से बैठेंगे, उनको आगे बिठाओ, कुर्सी बिठाओ, माला पहनाओ उनको, वो ही था व्यक्ति वो, आपका केवल उनको देखने का दृष्टि चेंज हो गया क्योंकि आपको नॉलेज प्राप्त हो गया है ना। तो ज्ञान जो है ना वो आपको जीवन में सही चीज क्या है दिखा देता है, जिसके बारे में आप अज्ञान हो, अवज्ञ मतलब क्या कहते हैं उसको, अज्ञान में हो, वो प्रकाश डाल देता है उसके ऊपर और आप उसको पहचानते हो कि सत्य क्या है। तो मदन मोहन जी की कथा बताएंगे पहले आपको। तो मदन मोहन जी जो है ना वो भी ऐसे लुप्त हो गए थे, भगवान बज्रनाभ ने उनको स्थापन किया यथा अवकाश, वो लुप्त हो गए। तो हमारे चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद हैं, उनका नाम है अद्वैत आचार्य, लिख लो, अद्वैत आचार्य जो है वो महाविष्णु के अवतार थे, सदाशिव और महाविष्णु दोनों के एक साथ अवतार होके अद्वैत आचार्य प्रकट हुए। और अद्वैत आचार्य पहले शांतिपुर में रहा करते थे, वो थोड़ा सा नवद्वीप से दूर है, मायापुर के मायापुर से कलकत्ता जाने के रास्ते में आता है वो शांतिपुर, वहाँ पर रहा करते थे। तो वो भजन करने के लिए महाप्रभु के जन्म होने के पहले भजन करने के लिए वृंदावन में आ गए। फिर वही बात, ऐसा भजन करते थे वो, उधर एक वट है हमारे वृंदावन में, उसका नाम ही अद्वैत वट है क्योंकि उस वट के नीचे बैठकर अद्वैत आचार्य भजन किया करते थे, भगवान को पुकारते थे वो। उनकी पुकार इतनी गहरी थी कि लुप्त हो गए हुए मदन मोहन जी, मदन गोपाल जी उनके सामने ऐसे प्रकट हो गए। अभी भी वो पेड़ है जिसके नीचे वो बैठकर भगवान उनके सामने प्रकट हो गए थे, शायद आप लोगों को लेके गए थे हम लोग लास्ट यात्रा में, अद्वैत वट आप लोग गए थे ना। तो भजन से, केवल पुकार से, कशिश से, दर्द से, पुकारे हुए भावना से भगवान वहां स्वयं प्रकट हो गए, अदृश्य थे वो, दृश्य हो गए, फिर मूर्ति रूप में प्रकट हो गए। फिर अद्वैत आचार्य ने कुछ दिन उनका सेवा किया उसी पेड़ के नीचे, फिर महाप्रभु का जन्म हुआ तो उनको किसी के हाथ सौंप के वो मायापुर चले गए, महाप्रभु की लीला में सम्मिलित होने के लिए, सेवा करने के लिए। तो किसको दिया उन्होंने, मदन मोहन गोपाल जी को, उनका दो नाम है मदन गोपाल, मदन मोहन जी सेम है हा? तो किसको दिया, एक मथुरा में चौबे थे, चौबे यानी चतुर्वेदी ब्राह्मण थे, पुरुषोत्तम गोस्वामी, पुरुषोत्तम नाम था उनका, उनकी पत्नी और वो दोनों इतने भक्त थे भगवान के, वात्सल्य भाव, भगवान को अपना बालक मानते थे, ऐसे वात्सल्य भाव में थे वो। तो उनको ये विग्रह सौंप दिया उन्होंने मदन गोपाल जी, उनके घर में मथुरा में रहते थे वो। और सेवा कैसे करते थे वो, उनकी पत्नी भी डांटती थी उनको, तो बहुत नटखट है, बहुत शरारती है, कितनी देर से यमुना किनारे खेल रहा है, चलो जल्दी आके बैठो। तो क्या करते थे मदन गोपाल जी, कभी मूर्ति रूप कभी प्रत्यक्ष, कभी मूर्ति रूप कभी प्रत्यक्ष, उनके बच्चों के साथ में यमुना किनारे के रेत में खेलते थे वो। और मैया पुकारती थी, अरे टाइम हो गया अभी, चलो खाना खाने को आ जाओ, कितना खेलोगे अभी, डांट मारूंगी, डंडा दिखा के आती थी वो। तो भाग भाग के घर पे आते थे, फिर मूर्ति बन के खड़े होते थे, फिर डंडा दिखाते दिखाते भोग लगा देती उनको, डांटते हुए भोग देती, ऐसी सेवा करते थे पुरुषोत्तम जी, उनकी पत्नी भी, ऐसा भाव था उनका भगवान के प्रति, कभी प्रत्यक्ष कभी मूर्ति। क्या देखिए आप, सिन्हा जी भी ऐसे थे हमारे, कभी प्रत्यक्ष कभी मूर्ति, अष्ट छाप के साथ कभी लीला कर रहे हैं तो कभी मूर्ति रूप में भोग स्वीकार कर रहे हैं विठल नाथ जी और गोकुलनाथ जी से, और फिर अष्ट छाप के हाथ में सूरदास जी और ये चतुर्भुज जी और कुंभन दास जी, उनका लीला करते थे, फिर कभी मूर्ति में आते थे कभी बाहर खेलते थे। ऐसे मदन गोपाल जी लीला कर रहे हैं मथुरा में। तो सनातन गोस्वामी फिर चैतन्य महाप्रभु से 2 महीने की संबंध ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करके उनके आदेश के अनुसार वृंदावन में आते हैं। इनके विषय में एक बहुत सुंदर भजन है षड गोस्वामी अष्टक, उसमें एक लाइन है, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत्। ये लोग मंडलपति थे, मतलब राजा की तरह थे रूप सनातन, सारे गोस्वामी, रघुनाथ दास भी राजकुमार थे, हर एक व्यक्ति बहुत धनी परिवार से बहुत ऐश्वर्य संपन्न जीवन में थे वो पहले, हाँ। तो वो इतना धन था, भाई बताया ना आपको मैंने, इतने बोट लोड धन था उनके पास, मंडलपति थे वो, लेकिन कैसे त्यक्त्वा तूर्णम अशेषम, जैसे तृण का पत्ता कोई त्यागता है ना, उसमें क्या बड़ा त्याग क्या है, आपने घास का पत्ता आपके पास था उसको आपने फेंक दिया, त्याग दिया उसको, इस तरह से उन्होंने इतना ऐश्वर्य त्याग दिया क्या करने के लिए, वृंदावन में आके कोपिन पहन के भिक्षा मांगने के लिए। तो आप बोलेंगे अरे क्या प्राप्त किया उन्होंने, इतना अच्छा ऐश्वर्य था, इतनी जिंदगी थी, सब छोड़ के कोपिन पहन के नंगे पैर घूम रहे, पेड़ के नीचे कोई घर भी नहीं है, खाने का भी कुछ ठिकाना नहीं है, भिक्षा मांग के जो मिलेगा वो खाना है, ये भी कोई जिंदगी है, इसके लिए त्याग किया उन्होंने, तो पागल लगते वो। लेकिन वो पागल नहीं थे, बड़े विद्वान थे वो। कृष्ण प्रेम का सर्वोत्तम ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए दुनिया का मंडलपतित्व, दुनिया का ऐश्वर्य उन्होंने छोड़ दिया, भिक्षा मांगने का जीवन स्वीकार किया उन्होंने। वैसे भी तीन दिन के ऊपर एक पेड़ के नीचे भी रहना नहीं है, पर ये पेड़ अच्छा है, छाया भी अच्छी है, फल भी अच्छी है, जगह भी अच्छी है, सुरक्षा भी है, तो इधर ही रहेंगे इसी पेड़ के, वैसा भी नहीं है, तीन दिन के ऊपर पेड़ भी चेंज करना है ताकि अटैचमेंट ना हो उस पेड़ से भी। पेड़ किसे अटैचमेंट कैसे होगी, आपको बोलेंगे जाओ पेड़ में सो जाओ, आज रूम खाली करना पड़ेगा, शादी का माहौल है, खंडेलवाल अभी बुक हो गया है, एक दिन बीच में रोड पे रहना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे अरे बाप रे रोड पे रहना है, बोले कल ये रोड चेंज करके वहाँ रोड जाना पड़ेगा क्योंकि ये कल रोड पे बारात आने वाली है, इसलिए आपको खाली करके वो आश्रम के सामने रहना पड़ेगा, तो आप क्या बोलेंगे, भाग जाएंगे आप तुरंत, अगला ट्रेन पकड़ के बॉम्बे जाएंगे, नहीं करना यात्रा अपने को। इतना बड़ा ऐश्वर्य छोड़कर वो तीन तीन दिन में पेड़ भी चेंज कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी वृंदावन में आते हैं, पेड़ के नीचे रह रहे हैं, और भिक्षा करते तो उनको आटा मिलता है गेहूँ का, वो आटा लेके आएंगे जमुना किनारे में, उस आटे का गोली बनाएंगे, अग्नि में उसको सेकेंगे, और वैसे ही उसको भगवान को भोग लगा के खाएंगे, उसको बाटी कहते हैं, बाटी। अभी आजकल की आपकी बाटी तो क्या है, बढ़िया घी में तली हुई, फर्स्ट क्लास में नमक मसाला डाल के पूरा घी में डुबा के उसमें साथ दाल चूरमा बाटी करके बड़ा पार्टी करते हैं, लेकिन बाटी का उगम कहाँ से हुआ है, सनातन गोस्वामी का जो लीला है ना उसमें बाटी का उगम हुआ है। वो बाटी नमक के बिना रहा करती थी और सख्त हुआ करती थी, कैसे भी बनाने का है, पेट चलाने का है शरीर को, इसलिए बनाते थे उसको, और केवल उतना ही लेके अपना भजन दिन भर करते थे। तो ऐसे अवस्था में भिक्षा मांगने के लिए सनातन जी मथुरा जाया करते थे। जब भी वो एक दिन इस गोस्वामी के घर पुरुषोत्तम चौबे के घर में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि मैया ने मदन गोपाल जी को भोग लगाया है, विग्रह खड़ा है, भोग लगाया है और डांट रही है उसको, डंडा लेकर डांट रही है, और ये भिक्षुक सन्यासी खड़े हैं, भवती भिक्षाम देही करके खड़े हैं बाहर, और देखते हैं तो बड़ा अजीब लगता है उनको, ये भी कोई ठाकुर जी की सेवा है, अरे ठाकुर जी है वो, उन्होंने स्वयं भगवान के आदेश के ऊपर ग्रंथ लिखा है, हरि भक्ति विलास, वो क्या ग्रंथ है, भगवान के विग्रह की पूजा कैसे करनी चाहिए इसके लिए पूरा विस्तार पूर्वक उन्होंने लिखा है, उसके आचार्य है वो, और वो आचार्य जिन्होंने भगवान के विग्रह की पूजा कैसे करनी चाहिए इसके ऊपर ग्रंथ लिखा है, वो खड़े हैं भिक्षा मांगने के लिए और देख रहे हैं कि डांट रही है वो। तो वो डांटना खत्म जब हो गया तभी बोले मैया ये भगवान की सेवा ऐसे नहीं करनी चाहिए, ये सही नहीं है। तो बेचारी मैया को सिखाया बैठ के उन्होंने, ऐसा ऐसा ये भगवान है, ये तो त्रिभुवनेश्वर है, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। वो बोले बाप रे, वो तो संत थे ना, संतों को बहुत आदर करते थे गृहस्थ लोग, बोले इतने बड़े महात्मा बता रहे, मैंने तो इतना दिन से डांट रही हूँ डंडा पकड़ के, पता नहीं क्या क्या अपराध किया मैंने, उस दिन से उसने एकदम बाप रे, हाँ ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम करके सब शुरू किया उन्होंने, भोग लगाना, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च, डंडा बिंडा रख दिया बाजू में, गो ब्रह्मण्य हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः करके शुरू किया सब, एकदम भाव चेंज हो गया ना, वात्सल्य भाव एकदम ऐश्वर्य भाव में आ गया पूरा। सनातन जी पूरा अपना भिक्षा लेके चले गए। रात के समय भगवान मदन गोपाल जी सनातन गोस्वामी के स्वप्न में आए, उन्होंने कहा सनातन तुमने तो पूरा गड़बड़ी कर दिया, सारा रस भंग कर दिया, मुझे इतना आनंद आ रहा था उधर मैया की गाली खाते हुए रोटी पाना, तुमने आके तो पूरा माहौल ही बिगाड़ दिया पूरा, अभी तो पूरा मंत्र बोलती हो मेरे लिए, पूरा आनंद समाप्त हो गया, तुमने तो पूरा आनंद का रस ही खत्म कर दिया मेरा, हरि भक्ति विलास लिखा तुमने और मेरा रस का पूरा भंग कर दिया तुमने, अभी मुझे वहां बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा है। अभी एक काम करो, कल जाओ उधर और मुझको भिक्षा में मुझको ही दे देगी वो आपको, वो मुझे ले जाना आप और अपनी तरफ से मेरे भजन करना आप। अभी मुझे वहां पर रहने का कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि वहां पर रह के मुझे वो ऐश्वर्य वाला पूजा वूजा पसंद नहीं आता है, तो आप ही ले चलो मुझे आप। तो प्रशांतन जी भी थोड़ा डर गए, बाप रे बाप के भाई, नहीं तो जाके सोचा कि उसको उपदेश करूँ, बेचारी अज्ञान बालिक माता है तो उसको समझाना चाहिए, तो मैंने बहुत गड़बड़ कर दिया मैंने। और भगवान मदन गोपाल जी उसके भी स्वप्न में आए, वो माता और पिताजी के, बोले कल जो आया था ना भिक्षुक वो दोबारा कल आएगा टुमारो, तब मुझे उनको दे देना भिक्षा में। तो वो रोने लगी सपने में, अरे बाप रे मैंने तो समझ गई थी, जब बाबा ने समझाया मुझे सब कुछ तो मैं समझ गई थी, मैंने इतना दिन अपराध किया उनका, तो नाराज हो गया मुझ पर, वो जा रहे क्या करूं। वो रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी, सपने में ही रोने लगी, और फूट फूट कर रोते तो जग गई वो। अभी क्या करें, अभी गलती तो हो गया ऐसा लग रहा है, अभी आदेश तो पालन करना ही है। अगले दिन आ गए भगवती भिक्षान दे, तो दे दिया पूरा विग्रह उनके हाथ में, रोते हुए दे दिया। इन्होंने भी आदेश है भी क्या किया, मैंने भी गलती किया, इन्होंने भी गलती किया, दोनों सोच रहे मैं गलती किया, लेकिन क्या करें, दोनों भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्या है, गलती तो हो सकती है लेकिन आदेश का पालन करना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपकी गलती भी होगा तो भी आदेश का पालन छोड़ना नहीं चाहिए आपको, वो टॉप पर है, गलती होना नीचे के लेवल पर है, लेकिन भगवान का आदेश का पालन करना श्रेष्ठतम है। तो लिया भगवान को लेके जा रहे हैं वृंदावन की, और बोल रहे हैं देखो ऐसा है कि मैं तो भिक्षुक हूँ, मैं तो आटा मिलता है बाटी बनाता हूँ खाता हूँ, तो हाँ कोई बात नहीं, जो आपको मिलेगा ना वो मुझे भोग लगाया करो, मैं आपके साथ में रहूँगा, आनंद करूँगा, आप ले चलो। देखो मेरे पास घर भी नहीं है, मंदिर भी नहीं है, मेरा घर पेड़ के नीचे रहता हूँ, पेड़ की ढोली में रहता हूँ, जहाँ रखोगे वहीं पर आराम करूँगा मैं, चिंता मत करना। देखो कल बोलेंगे फिर मिठाई चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फिर मेरे पास नहीं चलेगा, कोई मिठाई की जरूरत नहीं, आपको जो मिलेगा वो प्रेम से अर्पण करो, मैं रहूँगा आपके साथ। फिर वो पेड़ के नीचे रखते थे उनको, और रोज भक्षा मांग के लेके आते थे आटा, जमुना जी के जल में बाटी बनाते थे, उसको भूनते थे, उसको अर्पण करते थे और भोग लेते थे और खाते थे। बहुत दिन के बाद अभी देखो, हम तो अभी गोपीनाथ जी के मंदिर गए, गोविंद जी के मंदिर में गए, गोविंद जी ने हमसे बात किया, क्या कैसे करेंगे, हमारा हृदय इतना अशुद्ध है, अपवित्र है, इतनी वासनाएं हैं दुनियादारी की, कैसे बात करेंगे, वो पवित्र होगा तो बात करेंगे ना। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, इनसे बात करते थे भगवान रोज, खाना कैसा था हमको बोलते थे, अच्छा था नहीं था हमको बोलते क्या, हम लोग तो कोई मीट नमक के बिना भी अर्पण करते हैं। एक बार मैंने मंदिर में ना वो क्या कहते हैं उसको, कौन सा फूल था वो, लींबू फूल डाल के मैंने एक बार खीर बनाई थी, क्या बनाया था, कुछ बनाया था मैंने उसको, कुछ बनाया था मीठा, मुझे लगा लींबू फूल मतलब शक्कर है, वो शक्कर दिखता शक्कर जैसा है, तो मैंने उसको मंगल भोग में बना के भगवान को अर्पण किया था। और मैं खुद जाके उसको भगवान सब भक्तों को परोस रहा हूँ ब्रेकफास्ट में, और कोई भी नहीं खा रहा है उसको, तो मैंने लगा क्या हुआ तुम लोग क्यों नहीं खा रहे हो, मैंने बनाया सुबह उसको आज, बोले प्रभु जी बहुत खट्टा है वो, बोले खट्टा कैसे होता है, मैं शक्कर डाला उसके अंदर। तो मैंने जो पुजारी मुझे गाइड किया था ना कि ये सामान यहाँ रखा है, उनको मैं किचन में लेके गया, बोला ये बॉटल से मैंने डाला था उसके अंदर, बोले प्रभु जी शक्कर नहीं है, लींबू फूल खट्टा है, खट्टा ही। तो भगवान ने कुछ बोला क्या मुझे, क्या कर रहा है विश्वरूप तू, मुझे लींबू फूल का खट्टा मिठाई खिला रहा है, भक्तों ने बताया लेकिन भगवान ने थोड़ी बताया। तो वैसे हमारी स्थिति वैसे, लेकिन सनातन गोस्वामी को एक दिन भगवान बहुत दिन के बाद में बोले, अरे सनातन कितने दिन नमक के बिना मुझे तो वाटी खिलाएगा, थोड़ा नमक तो डाला कर कम से कम, थोड़ा तो स्वाद तो आ जाए उसके अंदर, कितना दिन मैंने आया तो सही आपके साथ था, हाँ बोला सब, मैंने एग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरी दरख्वास्त यह है कि थोड़ा नमक डाला करो। मैंने कहा था कि मेरे पास कुछ साधन नहीं है, आज नमक मांग रहे हो कल मीठा मांगोगे, कहाँ से दूंगा मैं, ना मैं खाता ना मुझे मिलता, मैं कहाँ से दूंगा आपको। उसी समय ना एक वहां पर, ये वृंदावन की कथा है, वहां से मथुरा से वृंदावन आकर रह रहे हो, उधर एक जगह है उसका नाम है द्वादश आदित्य टील, हाँ वो जो टील है ना वो वहां पर कालिया का मर्दन करके बहुत समय जमुना जी के ठंडे जल के अंदर रहने के बाद में जो ठंडे हो गए थे भगवान, वो जाकर उस टेकड़ी पे पड़े बैठे थे, और वहां पर 12 सूर्यों ने आकर उनको हीट दिया था। द्वादश मतलब 12, आदित्य यानी सूर्य, टील यानी टेकड़ी, तो जहां पर भगवान को 12 सूर्यों ने आकर एक साथ में गर्मी दिया था, उस जगह का नाम है द्वादश आदित्य टील। वहां पर सनातन जी ये मदन मोहन मदन गोपाल जी के विग्रह की सेवा कर रहे हैं और वहां पर ये चर्चा हो रही है। मदन गोपाल ने वहीं पर्वत में अपने मुरली से सनातन गोस्वामी के लिए एक कुआं बनाया था। कोई पहाड़ में कभी कुआं बनता है क्या? क्योंकि ब्रज में कई जगह पर पहाड़ों पर कुएं भगवान ने बनाए हैं, वेणु को बोलते हैं उनको, कई जगह पर है, उधर ऊंचे गांव में है, उधर द्वादश अजटील पे है, उधर एक श्री जी के पहाड़ पर एक ललिता कूप है, एक सेवा कुंज में है, कई जगह पर ऐसे भगवान ने मुरली से पत्थर के अंदर, जहाँ पानी कैसे आ सकता है, पानी तो जमीन के अंदर से आ रहा है ना, पत्थर से कैसे आएगा, लेकिन आज भी वहाँ पर बहुत ही परमानेंट अनंत जल का स्रोत है और हम लोग जाके वहाँ का पानी पीते हैं हमेशा। एक रिवाज है वहाँ का कि वहाँ जाके पानी सनातन गोस्वामी के वेणुकूप का पानी पीना चाहिए। तो उसमें वहाँ पर ये लीला चल रही है, भगवान नमक मांग रहे हैं। उसी समय जमुना जी में तूफान आता है और एक व्यक्ति मुल्तान पंजाब, मतलब अभी पाकिस्तान में है वो, वहां से वो तभी पंजाब प्रांत था, पंजाब दो भाग हो गया ना, एक फिर पाकिस्तान में गया, एक भारत में आ गया। तो उस समय वो व्यापारी रामचंद्र कपूर एक जहाज में मीट नमक भर के बेचने के लिए आ रहा था नदी नदी से। तो वृंदावन में जब आया तो उसको आगरा वगैरह जाके बेचना था सब कुछ, लेकिन वृंदावन में जमुना जी के तूफान में उसका जहाज फंस गया और गोल 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 घूमने लगा और कैसे भी करके वो अपनी जान बचा के किनारे पे आया और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ मेरा जहाज डूब रहा है, मेरा जहाज डूब रहा है। उस समय हमारे मदन गोपाल जी मदन मोहन जी प्रत्यक्ष होकर ग्वाल बालों के साथ में जमुना किनारे के रेत में खेल रहे थे वृंदावन में। तो वो व्यापारी व्याकुल होकर आता है, बोलता है अरे भाई बचाओ बचाओ। तो मदन गोपाल जी क्या बोलते हैं, ये पहाड़ पर एक बाबा बैठे हैं सनातन जी बाबा, उनका कृपा होगा ना तो आपका जहाज बच सकता है। तो भाग के ऊपर गया, वो तो डेस्परेट है ना, वो क्या जो बोलेगा उसके बाद भाग रहा है, वो पहाड़ पे भागता है तो सनातन जी से मिलता है, बोलते हैं मेरा जहाज डूब रहा है बचाओ मुझे आप, बोलते हैं मदन गोपाल जी बचा सकते हैं आप। तो भगवान उनको भक्त के पास भेज रहे हैं और भक्त उनको भगवान के पास भेज रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? भगवान हमेशा अपने भक्त को श्रेय देने के लिए कोशिश करते रहते हैं। कृष्ण इज ऑलवेज ईगर टू गिव क्रेडिट टू हिज डिवोटीज, और भक्त भगवान को श्रेय देने के लिए आतुर रहते हैं हमेशा, ऑलवेज ईगर टू गिव क्रेडिट टू लॉर्ड। तो जैसे ऊपर भेज दिया और उन्हें भगवान का नाम लिया, भगवान ने क्या कि अपना वो होता ना कमर पट्टा बांधते ना खेलते, सब निकाल दिया ऐसे 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 हवा में घुमाया उसको, क्या किया हवा ऐसे घुमा के हवा का दिशा बदल दिया भगवान ने। हम लोग कई बार घुमा चुके हैं ऐसे लेकिन कुछ बदला नहीं, लेकिन भगवान ने जैसे ही घुमाया वो तूफान की दिशा बदल गई, जैसे मानो भगवान ने ऐसा वो बोट को ऐसे खींच के किनारे पे लाया, वो जहाज बच गया उसका। तो जैसे ऊपर नीचे जा रहा है तो वो जहाज तो आ गया उधर, तो बालक ने कहा बाबा की कृपा से, बाबा ने कहा मदन गोपाल की कृपा से, कंफ्यूज हो गया बेचारा वो समझ में नहीं आया उसको क्या है लीला ये। तो बाबा के पास आया, बोला ये सब आपका ही है बाबा, ये तो सब गया ही था, आपने बचाया है। तो बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो गया वो सारा बेच के आया, धन कमा के आया, वो धन लेके वापस आया, बोलते ये सब धन आप ले लो, ये सब आपका ही है, मेरा कुछ नहीं इसके, आपने बचाया है, मेरी जान भी बची मेरा धन भी बचाया, आपकी सेवा में लगाना है। तो कहते हैं कि मैं तो फकीर हूँ, पेड़ के नीचे रहता हूँ, मुझे क्या जरूरी है, ये मदन मोहन जी के लिए मंदिर बनाओ। तो रामचंद्र कपूर ने फिर अपने धन से सबसे पहला, उस समय का लुप्त होने के बाद सबसे पहला गोविंद जी के मंदिर के आने के पहला मदन मोहन जी का मंदिर उस टील पर बनाया, द्वादश आदित्य टील पर बनाया और वहाँ पर मदन मोहन जी के विग्रह को स्थापन किया। और उसके बाद में फिर वो दो राधा रानी आई, फिर एक ललिता देवी और एक राधा रानी स्थापन की गई उसके बाद में। और जब मंदिर बन रहा था तो सनातन गोस्वामी कृष्णदास ब्रह्मचारी नाम के अपने शिष्य को मदन मोहन जी की सेवा देकर ब्रज में भ्रमण करने के लिए चले गए। वो तो उनका एक स्थान है चक्रेश्वर महादेव गोवर्धन के बीच में, वहाँ उन्होंने भजन किया है, ब्रजवासियों को प्रचार किया है। और एक स्थान है उनका पावन सरोवर के किनारे पर, उनका भजन कुटी है, वहाँ पर उन्होंने भजन किया उन्होंने। लेकिन जब मंदिर पूरा हुआ तब सनातन जी नहीं रहे, वो पधार चुके थे। उसके बाद में 1680 में मंदिर 1670 में मंदिर पूरा हुआ, उसके बाद में गोविंद जी का मंदिर तैयार हुआ। तो फिर क्या हुआ, ये सब चले गए। उसके बाद में फिर औरंगजेब का आक्रमण हुआ, तो भी सनातन गोस्वामी नहीं थे, उनके शिष्यगण थे। मंदिर तो भव्य बन गया था, बहुत सुंदर पहला वाला मंदिर। तो मदन मोहन जी को फिर यहाँ लाया गया, विग्रह अभी यहाँ पर नहीं है, तो किधर गए वो? तो क्या हुआ कि वो जहाँ पर उनका मंदिर बनाया गया वहाँ पर की राजा की जो कन्या थी वो मदन मोहन जी के इतनी प्रेम में आ गई उनके, वो भजन भक्ति में इतनी वो मग्न हो गई कि मदन मोहन जी उनका जीवन बने। बहुत विशाल मंदिर बनाया गया, राजा ने अपने मंदिर बनाया तो बहुत विशाल मंदिर बना। तो जब उसकी कन्या उपवन हो गई, विवाह का समय हुआ, तो विवाह भी हो गया उसका, विवाह हो गया, सब कुछ हो गया, सब फेरे सब कुछ हो गया, रात के समय में फेरे हो गए, राजपूत हो गए, रात में होते हैं, रात में फेरे हो गए। विदाई का समय आया तो विदाई के समय में लड़की बोलती है मैं नहीं जाऊंगी ससुराल। बोले क्या पागलपन है, सब शादी वगैरह सब कुछ हो गई, तुमने हाँ भी कर दिया, सब कुछ हो गया, अभी विदाई के समय जाना है आपको, ऐसा नहीं करना है आपको। वो कहते हैं कि मदन मोहन जी के बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये सब कुछ जो रिश्ते नाते हैं वो सब दुनिया के रिश्ते नाते हैं, सब टेम्पररी है, मेरे असली पति तो मदन मोहन जी हैं, और अगर मदन मोहन जी नहीं जाते हैं तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तो भी बहुत गंभीर समस्या है, राजा के परिवार में ऐसा सब घोटाला हो रहा था, वो कितनी बड़ी बात है। तो उन्होंने फिर अपने समझी लोगों से बात किया कि ऐसे ऐसे हमारी लड़की जो है वो मदन मोहन जी के प्रेम में इतनी है, मग्न है कि वो नहीं विदाई करना चाहती है, तो क्या किया जाए। अरे समधी भी बड़े भक्त थे, ये भी बड़े भक्त हैं, लड़की भी बड़े भक्त हैं, समधी भी बड़े भक्त हैं। समधी जी कहते हैं कोई बात नहीं, हम मदन मोहन जी के साथ इनको लेके जाएंगे, आप बोल के देखो उनको। तो प्रस्ताव रखा उनके सामने कि मदन मोहन जी के साथ जा सकते हो। हाँ हाँ मदन मोहन जी जाएंगे तो मैं जाऊंगी, लेकिन मेरी ये शर्त है पहले मदन मोहन जी के लिए मंदिर बनाया जाए, उनके रहने का आसरा ठीक किया जाए, तो मैं फिर तब लेके निकलूंगी उनको। तो राजा ने अपने राजकुमार के साथ विवाह किया है। राजा ने करौली का राजा था वो, करौली यहाँ से 6 घंटा कल हम जाएंगे, तो करौली का राजा था, वहाँ पर उन्होंने एक भव्य मंदिर बनाया। मंदिर रेडी हो गया, फिर मदन मोहन जी के साथ में ये कन्या जो है वहाँ पर शिफ्ट हो गई, विदाई हो गई उसकी। तो जीवन भर उसने उस मंदिर में मदन मोहन जी का सेवा किया, इसीलिए मदन मोहन जी जयपुर में आने के बाद भी उनका मंदिर करौली में है। ये सब इतिहास क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब भक्ति के लिए भगवान अपना सब प्रोग्राम चेंज कर देते है ना। अभी वहां से यहाँ को आए, जयपुर के राजा के भक्ति को स्वीकार करने के लिए यहाँ पर आए। औरंगजेब किस झाड़ की पत्ती है, वो तो क्या है, भगवान को क्या कर सकता है। भगवान जाने के बाद उसे जाकर पूरा गोविंद देव का मंदिर का हर एक पिलर पे, हर एक स्तंभ पे जितने भी बनाए थे ना, वो सबको खोट खोट के सब बेढंग बना दिया उसको पूरा। सभी विग्रह के जितने भी थे ना, वो लीला में जितने भी थे, उसका मुंह ठेच दिया उसने पूरा, सब जगह पर हर चुन चुन के सब लीला में जितने भी व्यक्ति हैं सबका मुंह उन्होंने तोड़ दिया है, इतना द्वेष था उनके मन में। तो एनीवेज भगवान तो भक्तों के प्रेम को स्वीकार करने के लिए यहां से वहां लीला करते हैं और जाते रहते हैं। तो यहाँ पे करौली का जाना भी एक कन्या जो है उसकी भक्ति का कारण है, वो भक्ति का परिणाम है। भगवान दिखाते हैं कि मैं मेरे भक्तों के इच्छा के अधीन रहता हूँ, मेरे अपनी कोई इच्छा नहीं होती है। दुनिया कहती है कि इनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, वो भी सही है एक तरफ है, वो एक लेवल पे वो भी सही है कि एवरीथिंग मूव्स बाय द डिजायर ऑफ द लॉर्ड, इवन द ब्लेड ऑफ ग्रास डज नॉट मूव विदाउट द सैंक्शन ऑफ द लॉर्ड, ये वेदों में लिखा है, ये भी सही है अपने लेवल पे। लेकिन उसके अंदर एक असली सत्य है, वो ये है कि मैं भक्तों की इच्छा के अधीन रहता हूँ। भक्त बोलते नचाओ नचाओ तो मैं नाचता हूँ, ये छछिया भर छाछ, आपको मालूम है छछिया मतलब क्या होता है, एनीबडी नोस छछिया मतलब क्या होता है, छछिया भर मतलब क्या होता है, नहीं छछिया भर उतना क्वांटिटी को बोलते हैं जितना दूध को दही जमाने के लिए दही की आवश्यकता होती है, उतने दही को छछिया भर दही कहते हैं। जो एक बड़े पात्र को भी उतना से जमाएंगे तो रात तक जम जाएगा वो, उतने छछिया भर छाछ के लिए अहिर की छोरियां नाच नचावे। हाँ अहिर मतलब क्या, वो ब्राह्मण भी नहीं है, ऐसे ही अहिर जाति के गुर्जरी, गुर्जरी कहते हैं उनको, गोपियां उस जाति की थी। तो ऐसी ही गुर्जरी की लड़कियां, अहिर की छोरियां जो है वो इतने से छाछ के लिए उसको नचाती थी कन्हैया को, भगवान को, और भगवान भी ठुमक ठुमक के नाचते थे और फिर बोलते थे कि थोड़ा सा दे दो, कि थोड़ा छछिया पर छाछ देते थे उसको, बोलते और दे दो, बोला और नाचो, फिर तालियां बजाते थे वो नाचते थे। उतने में क्या होता था कि वो दही भी ना पतला हो जाता था, क्या था आपको पता है कैसे होता है, वो मंथन करते हैं ना मंथन दही का, तो फिर मक्खन ऊपर आता है, तो राइट टाइम पे उसको निकालना चाहिए आपको। कभी आपने ट्राई किया है क्या, वो मक्खन आने के बाद में आप मंथन करते रहे तो क्या होता है, वो मक्खन गायब हो जाता है। तो ये लोग क्या करते थे मालूम है, ये भगवान उनके पास में जब वो बैठे थे ना मक्खन करने के लिए, तभी आते थे मांगने के लिए। तो ये क्या करते थे, उनके पास तो मक्खन तो रेडी नहीं है, तो वो उसको बोले नाचो नाचो, तो वो ऐसे नाच रहे हैं तो रुक गए, थोड़ा सा निकाल के दे दिया उनको। तो फिर वो नाच करने लगे, और चाहिए और नाचो, तो ऐसे करते करते क्या होता था, आया हुआ मक्खन भी वो गायब हो जाता था। पता बोलते थे अभी क्या है, अभी तो मक्खन है ही नहीं, क्या दूं आपको, बोले जो है वो दे दो, तो वो भगवान ले लेते थे। तो ये सब क्यों बता रहा हूँ मैं, कि इतने से छाछ के लिए भी भगवान नाचते हैं वृंदावन में जाकर, कठपुतली की तरह नाचते हैं, खिलौनों की तरह नाचते हैं, खिलौना बन जाते हैं भगवान के लिए, अपने भक्तों के लिए, है ना। तो ये भगवान है, असली बात तो यही है। बाहरी बात है कि उनकी इच्छा से सब चलता है, कुछ उनकी इच्छा के बिना चलता नहीं है। अंदर की बात यह है कि भक्तों की इच्छा के अधीन रहते हैं, भक्त उनको नचाते हैं। देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए वो, कहाँ वृंदावन में थे वो, जयसिंह के लिए इधर आ गए, यहाँ से गए करौली में, आज वहाँ निवास कर रहे हैं। कुछ नहीं, कुछ भक्तों ने मुझे प्रश्न पूछा आज कि वो वापस क्यों नहीं गए उधर, औरंगजेब तो एक दिन मर गया ना, तो औरंगजेब के कारण तो शिफ्ट हो गए थे, तो वापस भेजते अपने ओरिजिनल मंदिर में। बाय द वे औरंगजेब ने 7 मंजिल का मंदिर था वो 5 मंजिल तोड़ दिया, और आज जो विशाल मंदिर खड़ा है ना वो 2 ही मंजिल का है, 2 मंजिल ही बाकी है, 5 मंजिल तो तोड़ दिया उसने। तो क्यों नहीं गए, देखो भगवान जहाँ भी जाते हैं ना वहाँ लोग उनसे अटैच हो जाते हैं। तो ये सब लोग आए, ब्रिजवासी लोग आतंक समाप्त होने के बाद में, जैसे ने बोला सॉरी सर अभी मैं कुछ नहीं कर, हमारी प्रजा जो है ना बहुत अभी अटैच हो गई है इनसे, नहीं छोड़ सकते उसको, तो इधर ही रह गए वो। और आप सोचिए इतना बड़ा अरेंजमेंट जो यहाँ पर है, अब ब्रज में कैसे हो सकता है, अभी इतना विशाल मंदिर बना के उतनी भव्य सेवा हो रही है, हजारों लोग उनके मंगलार में जा रहे हैं। वैसे तो वृंदावन में नहीं होता है, खाली इस्कॉन के मंदिर में होता है। बाय द वे आपको मैं इस्कॉन में इसलिए बोलने रहा हूँ, लेकिन मैं कल भी आने के पहले वृंदावन में था, इतनी ठंड है यहाँ से तो अभी तो मुझे पसीना आ रहा है अंदर से, इतनी ठंड है वृंदावन में, लेकिन कम से कम 1000 लोग 4:30 को मंगलारती में खड़े हैं, उसमें केवल 50 लोग मंदिर के भक्त हैं, बाकी सब लोग बाहर के मेहमान लोग हैं। और आप किसी भी सीजन में जाइए, इस्कॉन की मंगलारती में 500 से 1000 लोग रहते ही है, ऑफ सीजन हो, क्रिसमस का सीजन हो, फेस्टिवल का हो, या कोई फेस्टिवल ही नहीं है, सब सुनसान है वृंदावन, फिर भी वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में 500 से 1000 लोग रहते हैं। लेकिन बाकी मंदिर में जाएंगे, पुरातन मंदिर में जाएंगे, 2, 4, 5, 20, 25 लोग रहेंगे, वो भी लोकल लोग आते हैं और जाते हैं। और यहाँ पर देखो 1000 लोग मंगलारती में आते हैं, तो भगवान भी रिझ गए यहाँ पर, भगवान भी रह गए यहाँ पर, वापस नहीं गए। तो वहाँ पर फिर वो उन्होंने नाराज हो गए सब लोग, ना बोल दिया, तो उन्होंने अपने मंदिर में जाकर प्रतिभू मूर्तियाँ स्थापन कर दी, सब हर जगह पर अपनी अपनी मूर्तियाँ स्थापन कर दी, यहाँ तक कि जहाँ जहाँ भगवान गए रास्ता में, राधा कुंड में गए, कमेवन में गए, वहाँ पर भी सब जगह मूर्तियाँ स्थापन करके अपनी सेवा शुरू कर दी। तो मदन मोहन जी जो है वो संबंध तत्व जो है वो आपको हम कल वहाँ पर बताएंगे, संबंध तत्व का अर्थ क्या है। तो गोविंद जी का एक थोड़ा सा, ठीक है कोई बात नहीं, टाइम तो होते रहता है सॉरी तो हमारे गिरिराज महाराज, परम पूज्य गिरिराज जी महाराज, वो ब्रह्मचारी थे, वो भक्त बने, हाँ अमेरिका के बहुत बड़े लॉयर थे, प्रसिद्ध लॉयर, मतलब कैन इमेजिन इतने बड़े लॉयर थे वो, जज थे उनके पिताजी, उनका इकलौता बेटा ग्लेन टिटॉन, वे भक्त बन गया और अमेरिका छोड़ के भी जुहू में आके उधर ब्रह्मचारी बन के उधर मंदिर स्थापना में कार्य कर रहे हैं। तो वो इंडिया में बहुत भक्त लोग आए, सबको पानी सहन नहीं हुआ, किसी को जॉन्डिस हो गया, किसी को टाइफाइड हो गया, किसी को क्या हो गया, किसी को पानी सहन नहीं होता है, किसी को उल्टी होती है, किसी को दस्त लगते हैं, बहुत उन्होंने तपस्या किया, बहुत मतलब विदेशी होकर भारत में अनडेवलप्ड इस्कॉन में रहना, ऐसा नहीं कि इस्कॉन अभी तो क्या है, इस्कॉन में तो इतनी गेस्ट हाउस बने, इतना अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत वेस्टर्न रेस्टोरेंट है, होल फूड्स है, क्या चाहिए आपको, MVT है, हर प्रकार का खाना मिलता है, अभी तो आसान हो गया है, उस समय बहुत मुश्किल था। उस जमाने में जब झोपड़ी थी, छप्पर था पतरे का, तभी ये लोग वहाँ रहकर उन्होंने मंदिर बनाया है, गिरिराज महाराज ने स्वयं खड़े होकर अपनी तपस्या से जुहू का मंदिर बनाया है, और हम लोग आज उसका आनंद ले रहे हैं, मार्बल टेम्पल का। लेकिन तब झोपड़ी थी, तभी आतंक भी हुआ था, गुंडों ने हमला किया था उसके ऊपर, छप्पर तोड़ दिया था, और मूर्ति भी तोड़ने वाले थे राधा रास बिहारी की, लेकिन फिर बाल ठाकरे ने फोन किया, अरे क्या कर रहे हो, हिंदुओं का मंदिर तोड़ रहे हो, रहना है क्या बंबई में आपको? तुरंत भाग गए सब गुंडा लोग, एक फोन किया और पूरा आतंक बंद कर दिया। इसलिए हम ऋणी हैं बाल ठाकरे के। तो वो जमाने में रहते थे उधर वो, तो बेचारे एक दिन वो एक समय पे जॉन्डिस से बहुत बीमार हो गए वो। तो प्रभुपाद जी ने कहा एक काम करो, अभी आप कुछ दिन ब्रेक ले लो, अमेरिका चले जाओ, अपने अपने वातावरण में जाओ, शायद वहाँ ठीक हो सकते हो। तो गिरिराज महाराज उस समय गिरिराज प्रभु वहाँ से अमेरिका गए, उनका घर उधर कैलिफोर्निया में है, कारपेंटेरिया। हम लोग गए उनके घर पे, तो वो जब गए उधर तो कुछ दिन अपने मम्मी पापा के घर पे भी गए। हाँ, पहले तो ग्लेन थे, अभी तो गिरिराज बनकर गए। तो आपको पता नहीं होगा, वो गिरिराज महाराज के पिताजी ने प्रभुपाद को मिले एक बार, इतने दुखी थे कि मेरा इकलौता बेटा ना हरे कृष्णा बन गया। ही बिकेम हरे कृष्णा, माय गॉड, इतना धन संपत्ति क्या करूंगा अभी मैं। तो उन्होंने ना प्रभुपाद जी को ब्लैंक चेक दिया, बोलते हैं आपको जितना अमाउंट लिखना है ना इस पे लिखो, कितना भी आपको जितना चाहिए उतना अमाउंट लिखो, मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। तो ग्लेन क्या करता है, गिरिराज प्रभु प्रभुपाद के कान में जाके बोलते हैं प्रभुपाद लिखो, बड़ा अमाउंट लिखो, वो चेक ले लो, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, मैं भी रहूंगा। लेकिन हमारे प्रभुपाद जी भी विशेष संत थे, वो बोलते हैं कि चेक बुक रखो अपने पास, ले जाओ अपने बालक को। आप आज का साधु होता ना, कोई पेपर में आता नाम ना बहुत सारे बैंड साधु वगैरह, बोलते ले लो भाई करोड़ों रुपए ले लो, और बच्चे को भी बाद में हिप्नोटाइज करके उसको भी रखेंगे और पैसा भी ले लेंगे। बेटा बोल रहा है पाप गुरु महाराज लिखो आप, बड़ा अमाउंट लिखो, मंदिर में काम आएगा, और मैं भी जाऊंगा नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी पापा को बोले, हृदय से बोले, देखो मुझे चेक वेक की आवश्यकता नहीं है, आपके बेटे की इच्छा है तो वो आपके घर में वापस जा सकता है, आपके बेटे से पूछो वो तैयार है तो ले जाओ उसको, और चेक वेक रखो अपने पास, कोई चेक की जरूरत नहीं। मैं चेक लेने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं लोगों को भगवान देने के लिए आया हूँ, आपका पैसा लेने के लिए नहीं आया हूँ, आपका संतुष्टि है, आपका बालक मेरे साथ में है, उसको ले जाओ। तो पापा बोले, देखो अभी आपके गुरुजी बोल रहे हैं चलो, तो बोले गुरुजी ने बोला है अगर उसकी इच्छा है तो वो आ सकता है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं आऊँगा घर पे आपके। इतना सारा चीज़ें हुई हैं, फिर वो जू में आए, उसके बाद में वापस लौट के अपने घर पे गए। ये सब होना बहुत पहले हुआ था, बहुत समय गुजरा है अभी, उसके बाद में बीमार हो गए, फिर अपने घर पे गए कारपेंटेरिया कैलिफोर्निया में। तो पापा ने बोला अभी चलो बहुत दिन के बाद बीमार होकर आए ना, अभी इस पर कुछ काम करते हैं। तो साइकियाट्रिस्ट को बुलाते हैं, वो बोलता है इसका इलाज करो, अभी घर पे आया ना इसको ठीक करो, मेरे ख्याल से पागल हो गया है, इसलिए वो सब हरे कृष्ण में जा रहा है, क्या सर मुनवा के रखा है, पता नहीं कैसे कपड़े पहनता है, और ये सब तो पागलपन का लक्षण है, तो ये पागल हो गया, इसका इलाज करो, कोई डिसीज है इसको, उसको इलाज करो। तो वो साइकेट्रिस्ट घर पे आई जब ये घर पे थी, तो पूछते हैं कि क्या आपको अपने मम्मी पापा ने प्रेम नहीं दिया इसलिए आप ऐसे बन गए? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, कौन से मम्मी पापा, मेरे तो कई जन्म हो गए हैं, हर जन्म में कोई नई मम्मी पापा थे, आप कौन से मम्मी पापा के बात कर रहे हैं? समझ सकते हैं आप, वो ऐसे वो था ना, वो जो हर्ष शोक था ना, वो चित्रकेतु का बालक था ना, उसने ऐसे पूछा था विच मदर एंड फादर आर यू, तो बेचारे फादर बोले थे मैं आपके मम्मी पापा हूँ, उन्हें बोले हमने कई जन्म लिए हैं, तो कौन से मम्मी पापा के बात कर रहे हैं? ऐसे अगर कोई साइकियाट्रिस्ट को जवाब देगा तो बोले तो पूरा ही पागल है। तो गिरिराज महाराज कहते हैं कि ऐसे मैंने बहुत सवाल पूछे, मैंने उनको इसी तरह के जवाब दिए हर टाइम पे। तो कुछ देर के बाद में बहुत सवाल जवाब होने के बाद में ऐसे अद्भुत जवाब मिलने के बाद, अभी तो साइकियाट्रिस्ट जो आप साइकियाट्रिस्ट को मिलेंगे वो बोलेगा कि आपको मम्मी पापा प्रेम नहीं देते, बोलते आप कौन से मम्मी पापा की बात कर रहे हैं, साइकियाट्रिस्ट खुद पागल हो जाएगा, मतलब मुझे जाकर डॉक्टर के पास जाके दवा लेना पड़ेगा, मैं पागल हो रहा हूँ ये जवाब सुन के। तो फिर बहुत देर के बाद में वो साइकियाट्रिस्ट बोला ये तो गॉन केस है, जाके मम्मी पापा को मिला। तो गिरिराज प्रभु जी कहते हैं कि मैंने उनका सुना क्या बातचीत कर रहे हैं, तो वो साइकियाट्रिस्ट पापा को बोल रहा था कि ये केस मेरे हाथ के बाहर का केस है, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये वो प्रभुपाद जी को आके समझाते हैं तो उनके बाद में आते निकल के पापा भी बोलते हैं तो गॉन कैसे भी क्या करूं मैं, साइकेट्रिस्ट भी मेरा हार गया, बेस्ट साइकेट्रिस्ट लेके आया था इतनी फीस देकर, वो भी बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता अभी मैं क्या करूं उसके लिए, जाने दो उसको, तो गया वो। तभी प्रभुपाद जी भी लॉस एंजलिस में आए थे यात्रा अपनी करते करते, तो उनको वहां मिलने गए तो गिरिराज प्रभु ने प्रभुपाद को ये पूरी स्टोरी बताई। तो प्रभुपाद बोलते हैं यस नाउ यू आर परमानेंटली इन्फेक्टेड, अभी आपको परमानेंट रोग हो गया है। तो ये गिरिराज महाप्रभु महाराज ने जब जयपुर यात्रा में आए थे 95 में, तो ये कहानी बताई। ये कहानी क्यों बताई? उन्होंने बताया कि राधा गोविंद मंदिर में जब जाते ना आप, तो रूप गोस्वामी ने एक शास्त्र लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु। हाँ, आप लोगों को सबको पढ़ना चाहिए वो शास्त्र। जैसे श्रीमद् भागवतम स्वयं कृष्ण है, वैसे भक्ति रसामृत सिंधु स्वयं राधा रानी है। राधा रानी का स्वरूप है वो। राधा रानी क्या व्यक्तिमत्व है, क्या चरित्र है, वो उस किताब में सब वर्णन किया है अद्भुत तरीके से। और उसमें जो सार है वो राधा रानी है, उस किताब का सार राधा रानी है। राधा रानी क्या करती है उसका पूरा वर्णन उन्होंने वहां पर किया है, भक्ति रस अमृत सिंधु, यानी कि भक्ति रस का अमृत का सागर, ऐसा वो किताब है। उसमें उन्होंने क्या क्या सिखाया है, सत्संग, नाम रुचि, भागवत श्रवण, विग्रह सेवा और धाम निवास, मैंने बताया ना, वो उसी किताब में दिया है। तो वो जब ही सत्संग का वर्णन, धाम नहीं सॉरी, उन्होंने क्या किया, ये हर एक पांच आइटम के लेके एक श्लोक बनाया। तो जब ही भगवान की विग्रह की सेवा ये विषय आया तो उसके लिए उन्होंने एक श्लोक बनाया। तो श्लोक का अनुवाद क्या है रूप गोस्वामी ने, ये मूर्ति श्रद्धान्वित सेवनम अर्च विग्रह पूजा, इस तत्व को समझाने के लिए एक श्लोक लिखा। उसका अनुवाद क्या है, उसका अनुवाद यह है, हे मेरे मित्र, हे प्रिय मित्र, अगर आपको इस दुनिया के फ्रेंडशिप में, प्रेम में, सोसाइटी में कुछ रुचि है, भौतिक दुनिया के इन सारे संबंधों में, प्रेम में और भोगों में रुचि है, तो कृपा करके आप जमुना किनारे मत जाना, क्योंकि जमुना किनारे गोविंद खड़े हैं रात के समय चंद्र प्रकाश में मुरली बजा रहे हैं। अगर आपने कहीं उनको देख लिया, उनका दर्शन कर लिया, तो वो आपके सारे जितने भी भौतिक दुनिया के प्लान है उसको छीन लेंगे, हरण कर लेंगे आपका पूरा। तो इसलिए वो गोपाल गोस्वामी वार्निंग देते हैं कि अगर आपको दुनियादारी में कुछ इंटरेस्ट है, हाँ, अगर आपको इस दुनियादारी के छोटे मोटे भोग से मिलने वाले आनंद में अभी भी रुचि है, तो कृपा करके जमुना किनारे में मत जाना, क्योंकि वहां पर गोविंद देव खड़े हैं। और हमने हमारी वार्निंग आपने नहीं सुनी और फिर भी आप गए, तो आपका सब नष्ट हो जाएगा, जो भी आपने अटैचमेंट बना के रखा है वो सब भगवान छीन लेंगे। तो वो कह रहे थे कि ये गोविंद देव के लिए दर्शन के लिए श्लोक है, लेकिन मैंने आपको वार्निंग बाद में दिया, आपने दर्शन तो कर लिया, टू लेट। ये आपको वार्निंग देने के पहले आप दर्शन करके आए, अभी यू आर मटेरियली फिनिश्ड, अभी आपका सब भगवान ने छीन लिया है। लेकिन वो कहते हैं कि ये भौतिक दुनिया जो है ना, वो एक रेगिस्तान की तरह है, और रेगिस्तान में ना बहुत प्यास लगती है। कभी आप गए रेगिस्तान में, गए कभी? मैं सऊदी अरब में दो साल रहा हूँ, और उधर अभी एक डेवलप्ड एरिया है और एक रेगिस्तान अभी भी है, और रेगिस्तान सफारी भी होती है उधर कभी कभी, रेगिस्तान में आपको ट्रिप भी कराते हैं। वहाँ पर कई दूर दूर तक पानी नहीं मिलता है, और वहाँ पर रहने वाले लोग ना बहुत प्यासे रहते हैं। तो समझो आप रेगिस्तान में हो, और कई दूर दूर तक पानी का नाम निशान नहीं है, और आपको बहुत प्यास लग रही है, और आपको एक बूंद पानी मिलता है, तो क्या लगेगा आप बताइए, क्या लगेगा? अरे आपको तो ग्लास के बाद और लीटर के बाद लीटर पानी की आवश्यकता है, इतनी प्यास लग रही है, और आपको क्या मिल रहा है, एक बूंद पानी। तो आचार्य कहते हैं कि भौतिक दुनिया भी रेगिस्तान की तरह है, और यहाँ पर हम लोग सब लोग तड़प रहे हैं आनंद के लिए, लेकिन हमको एक बूंद पानी मिलता है, जो हमको आज खुशी मिल रही है ना, जिसके लिए हम लोग इतना तड़प रहे हैं, वो एक एक्चुअली रेगिस्तान में बैठे हुए प्यासे को मिलने वाली एक बूंद पानी है। और उसमें भी हम लोग इतने आसक्त हैं, इतने चिपके हुए हैं, इतना लगाव है, और मेहनत भी बहुत जोरदार कर रहे हैं एक बूंद के लिए, लेकिन भक्ति जो है ना वो भक्ति रस अमृत सिंधु है। रेगिस्तान में तड़पने वाले प्यासे जीव को इसी समुद्र जैसे अमृत के भक्ति रस के जल से ही संतुष्टि मिल सकती है। और फिर भी इतना समझने के बावजूद भी अगर आपको उसी रेगिस्तान में रहना है और एक बूंद को ही प्राप्त करना है तो आप कृपा करके गोविंद देव का दर्शन मत कीजिए, ऐसे रूप गोस्वामी वार्निंग दे रहे हैं। और अगर गए आप तो वो मुरली की बजाने वाले जो है ना गोविंद जी, वो सब आपका छीन लेंगे। तो इसलिए आपने ऑलरेडी गोविंद देव का दर्शन कर लिया है, इसलिए आपका भौतिक दुनिया में कोई भविष्य नहीं बचा अभी। तो मैं नहीं कह रहा हूँ ये सब, मैं लेक्चर रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। रूप गोस्वामी ने हमको ताकीद तो दिया था कि हमने सुना नहीं उसको। अगर अभी आपके लिए गोविंद देव के अलावा कोई नहीं है, दुखी होने की बात नहीं है। गोविंद देव हैं, उनके भक्त हैं, उनका भक्त परिवार है, उनका धाम है, उनकी लीला है, उनका सेवा है, बहुत सारा कुछ है। तो ये जो हमने वहाँ जाकर शायद कुछ खोया हुआ है तो उसके बदले में गोविंद देव आपको भर भर के देंगे। आपने खोया होगा तिनका, आपको देंगे महल, ऐसे फॉर एग्जाम्पल। तो गोविंद देव जो है वो आपका आत्मा का भंडार भर देंगे। दुनिया की चीज़ें जो टेम्पररी है ना बूंद की तरह, वो छीन लेंगे आपसे, लेकिन आपको हृदय का आत्मा का भंडार जो है वो खोल देंगे आपके लिए, सागर खोल देंगे आपके लिए आनंद का। इसलिए चिंता मत करना। जैसे उन्होंने कहा कि अभी आप, अभी हम कहीं के नहीं रह गए, कहाँ जाएंगे अभी, बम्बई जाने का प्लानिंग करें। नहीं नहीं, बम्बई नहीं जा रहे हैं, राधा गोपीनाथ में जाएंगे, राधा रास बिहारी में जाएंगे, राधा गिरधारी में जाएंगे। क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर आप भगवान के विग्रहों की सेवा नहीं कर सकते, आपके घर में डीटी वर्शिप नहीं हो सकते, कुछ कारण हैं, बच्चे हैं आपके छोटे, बीमार बच्चे हो सकते हैं, अगर डीटी वर्शिप नहीं है तो जहाँ पर डीटी वर्शिप मंदिर में चल रही है अगर उसको आप जाके देखेंगे तो आपको डीटी वर्शिप करने का लाभ मिलेगा। आज हम गए गोपीनाथ मंदिर में, आरती हो रही थी, आपने सबने देखा ना। एक्चुअली आप सब लोगों को खुद आरती करने का लाभ गोपीनाथ को मिला, गोपीनाथ को आरती करने का लाभ सबको मिला आपको, क्योंकि आपने श्रद्धा से उसका दर्शन किया। आप गोविंद देव के मंदिर में गए तो आपको श्रृंगार आरती का दर्शन मिला, वहां पर भी क्या हो रही थी, आरती हो रही थी कि नहीं, उसका भी दर्शन आपने किया। तो आपको गोविंद देव के विग्रह का प्रत्यक्ष सेवा करने का, आरती करने का लाभ आज मिला है। अग्नि पुराण में कहा गया है कि डीटी वर्शिप देखना भी डीटी वर्शिप करने जैसा है, शास्त्र का प्रमाण है उसके अंदर। प्रभुपाद जी भी सातवें स्कंद में दूसरे अध्याय में 35वें श्लोक में तात्पर्य में इसको प्रमाण देते हैं। तो ये गोविंद देव का महात्म्य है। आपको, आप घिसे पिटे हो, तुच्छ हो, अयोग्य हो, बिल्कुल कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भी वो अपना बना लेते हैं। आपको किससे अपना बना लेते हैं, कोई योग्यता तो नहीं है फिर भी अपना क्यों बना रहे हैं, भावना देखकर अपना बना रहे हैं। और भावना तो फ्री में मिलती है ना। मैं बोलूंगा आपको 1000 रुपये का एक अलंकार, एक 1,00,000 रुपये का अलंकार ला के दो तो बोलोगे पैसा नहीं है मेरे पास, मैं गरीब आदमी हूँ। लेकिन भावना अर्पण करो बोलेंगे तो भावना तो फ्री में है, आपका इंडिपेंडेंस है, आप कितना चाहिए उतना भावना अर्पण कर सकते हैं भगवान को, वो तो आपकी देन है, आपके पास प्रॉपर्टी है। वो तो भाव के भूखे हैं, भावग्राही जनार्दन है वो। वो आपके अलंकार के और माला के और नेकलेस के और ड्रेस के भूखे नहीं है, वो तो भावग्राही जनार्दन है। तो भाव को अर्पण करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, गोविंद देव के चरणों में अपने भाव को रखने के लिए आ रहे हैं, अपने आप को, अपनी भावनाओं को अर्पण करने के लिए, प्रेम को अर्पण करने के लिए आए हैं। तब गोविंद देव आपको पूरी कृपा करेंगे, उनको, वो अपनो, आपको अपना बना लेंगे। जब आप उनके बन जाएंगे ना तो जीवन में कोई कमी नहीं होगी आपके, सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। क्लेश अग्नि शुभदा सांद्रानंद विशेषात्मा मोक्ष लघुता कृता, मतलब क्या, मोक्ष भी एकदम तुच्छ बन जाएगा उनके कृपा के सामने। श्री कृष्ण आकर्षणी, श्री कृष्ण का आकर्षण पैदा हो जाएगा। जिसके लिए लोग योगी तड़पते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए, वो मोक्ष भी आपके लिए तुच्छ बन जाएगा। इतना दिन देंगे आपको, देंगे वो इतना दान देंगे आपको प्रेम का कि आपको दुनिया में कोई रुचि नहीं बचेगी। इसलिए आप गरीब नहीं हो जाएंगे, आप रहेंगे अच्छी तरह से। हाँ, योगक्षेमम वहां में हम, आपके पास जो नहीं है भगवान देंगे, आपके पास जो है वो बचा के रखेंगे भगवान। चिंता मत करना आप, भगवान लूटते नहीं है, भगवान खाली देते हैं बस। और कहते हैं कि हम लोग भगवान को 2 हाथ से देते हैं, भगवान हजारों हाथ से हमको देते हैं। हम केवल 2 हाथ से कितना दे सकते हैं, कितना हमारे पास क्या है देने के लिए। लेकिन भगवान जब हमारा 2 हाथ से लेते हैं तो हजारों हाथ से हमको देते हैं। इसलिए आप डोंट वरी, बी हैप्पी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।